हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवीर सिंघानिया हाथ में जाम का ग्लास पकड़े एक एक घूंट स्टाइल से ले रहा था। उसके जख्म मेहर के दिए हुए अभी भी हरे थे। खासकर मेहर का किसी और के साथ सोना उसे दिन रात बेचैन कर रहा था। राजवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेहर किसके साथ सो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी और के साथ उसके सामने सो रही थी, क्योंकि मेहर का नाम राजवीर सिंघानिया से जुड़ा हुआ था। वो सही मायने में उसकी पत्नी थी, इसीलिए राजवीर ने सबसे पहले मेहर को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था और उसने जल्दी ही अपने वकील के जरिए तलाक के कागज तैयार करवाकर मेहर अरमान ठाकुर के घर भेज दिए थे। दूसरी ओर जोया पूरी रात अबीर के ऊपर लेटी रही थी। आधी रात को लगभग 3 बजे जोया की नींद खुली। उसने खुद को अबीर सिंह राठौर के ऊपर पाया। जोया ने कुछ पल अबीर की ओर देखा। सोया हुआ अबीर बहुत मासूम लग रहा था। जोया कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से अबीर का हाथ अपनी कमर से हटाकर उठकर बैठ गई और अबीर सिंह राठौर को ध्यान से देखने लगी। जल्दी ही उसे पिछली रात की सब बातें याद आ गईं। जोया सोचने लगी कि उसने इतने सालों तक अपने गम को दबाकर रखा था, फिर अचानक अबीर सिंह राठौर के सामने वो कमज़ोर क्यों पड़ गई थी? क्यों उसने अबीर को अपना सारा गम, सारा दर्द बता दिया था? जोया ने देखा कि काफ़ी रात हो चुकी थी, सुबह होने में अभी बहुत समय था। फिर जोया ने एक बार अबीर की ओर देखा और उसके बगल में जाकर लेट गई। जोया के लेटते ही अबीर राठौर मुस्कुराया, क्योंकि वो सोया नहीं था, सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। जोया बिल्कुल अबीर के बगल में लेटी और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। जैसे ही सुबह अबीर सिंह राठौर की आंखें खुलीं, उसने देखा कि जोया उसके सीने से चिपकी सो रही थी। जोया के बालों की कुछ लटें उसके मुंह पर गिर रही थीं। जोया बहुत खूबसूरत लग रही थी। कल ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं और नाक लाल हो गई थी। अबीर देर तक प्यार से जोया को देखता रहा। जैसे ही उसने उठकर बाथरूम जाने की कोशिश की, जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से कसकर गले लगाकर सो गई। वो बहुत गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से सोई न हो। आज अबीर राठौर का साथ पाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुरक्षित जगह पर हो। उसका दिल नहीं कर रहा था अबीर को छोड़कर जाए। नींद में भी उसने अबीर को कसकर पकड़ रखा था, इसीलिए अबीर उठने की कोशिश नहीं की और जोया के उठने का इंतजार करने लगा। मुश्किल से 5-10 मिनट गुजरे होंगे कि साइड टेबल पर रखा अलार्म क्लॉक बजने लगा। इससे जोया की आंख एकदम खुल गई। जैसे ही उसने अपनी स्थिति देखी कि वो अबीर से चिपकी हुई है, वो काफी असहज हो गई। जोया अपने बालों की लट पीछे करने लगी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। शर्म से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। अबीर ने ये अच्छी तरह से नोटिस कर लिया था। उसके बाद अबीर उठा और बोला, गुड मॉर्निंग, आप उठ गई हैं, मैं अभी आता हूँ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और आज आपको बिजनेस के कुछ नए रूल्स और नियम सिखाऊंगा, ओके? अबीर बहुत खुश लहजे में बोला था और उसके बाद वो सीधा बाथरूम में चला गया। अबीर का नॉर्मल व्यवहार देखकर जोया थोड़ी कम्फर्टेबल हुई, वरना वो शर्म से खुद को गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। वो सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी झल्ली हूँ, अगर मेरी आंख खुली थी तो मैं जाकर कहीं और भी तो सो सकती थी। मुझे क्या जरूरत थी इस खड़ूस सिंह राठौर के करीब सोने की? और चलो सो भी गई तो क्या जरूरत थी इतना चिपकने की? और अब देखो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। जोया को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो उठी और फटाफट अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि इस वक्त उसे बिजनेस सीखने की लगन हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द सब कुछ सीखकर इंडिया की कंपनी को टेक ओवर करेगी और अरमान ठाकुर और राजवीर सिंघानिया को बताएगी कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है। अबीर ने जोया के अंदर एक अलग ही जोश भर दिया था। अब उसके अंदर हिम्मत और जज्बे की कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भी जन्म लेने लगा था। सुबह जल्दी तैयार होकर ज़ोया अबीर के सामने मौजूद थी। ज़ोया ने देखा कि अबीर ने उसके पसंद का नाश्ता मंगवाया था। दोनों ने फटाफट नाश्ता किया और अपनी बेटी को देखने चले गए। ये उन दोनों का रूटीन बन चुका था। अबीर के पैर तो ठीक थे, लेकिन हाथों में अभी भी दर्द था। ज़ोया इसका ख्याल रख रही थी। दोनों ने दूर से ही अपनी बेटी को प्यार किया। फिर ज़ोया अबीर सिंह राठौर के साथ अपनी क्लासेस की ओर चल पड़ी। कड़ी मेहनत करके ज़ोया ने केवल एक महीने में बिजनेस के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नियम सब कुछ सीख लिया था। वो इतनी परफेक्ट हो गई थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके सामने पानी कम थे। वो एक परफेक्ट बिजनेस वुमन बन चुकी थी और अब वो किसी भी कंपनी को झुकाने और अपनी कंपनी को नंबर वन बनाने की पूरी ताकत रखती थी। अबीर ज़ोया को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस पूरे महीने में ज़ोया ने अबीर का बहुत ख्याल रखा था, जिससे अबीर बहुत जल्दी ठीक हो गया था। ज़ोया अलग कमरे में भी नहीं जाती थी, वो अबीर के साथ उसी के बिस्तर पर सोती थी, लेकिन उन दोनों के बीच अभी भी दूरी थी। हालांकि काफी हद तक उनकी दूरियां मिट चुकी थीं। ज़ोया हर रात अबीर को गले लगाकर सोती थी। ज़ोया ने अबीर से कहा था कि वो हर रात उसके साथ सोएगी। अबीर ने हैरानी से ज़ोया की ओर देखा, क्योंकि ज़ोया काफी हद तक अबीर सिंह राठौर से खुल चुकी थी। उसे अब अबीर से कोई बात कहने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही थी। ज़ोया ने अबीर से साफ साफ कहा, मुझे आपके साथ अच्छी नींद आती है, इसीलिए मैं आपके साथ ही सोऊंगी, और वैसे भी मैं आपकी पत्नी हूँ तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। ज़ोया का ये कहना अबीर को अंदर तक खुश कर गया था, और वो ज़ोया को प्यार से अपने साथ सुलाता था। जब तक वो सो नहीं जाती, उसके सर पर हाथ फेरता रहता था। वो बच्चों की तरह ज़ोया को अपने पास सुलाता था, जिससे ज़ोया अब काफी ज्यादा अबीर के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। ज़ोया की क्लासेस खत्म हो गई थीं। तब अबीर ने ज़ोया से कहा, आपकी बिजनेस वुमन वाली क्लासेस तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ है जो आपको सीखना है। अबीर की बातें सुनकर ज़ोया उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर अब ऐसा क्या रह गया है जो उसे और सीखना है। इतना कुछ तो सीख चुकी है। ज़ोया अब हर तरह से एक बेहतर बिजनेस वुमन बन चुकी थी। कोई भी उसके सामने टिक पाना मुश्किल था। अब ज़ोया के मन में ये सवाल घर करने लगा था कि आखिर ऐसा क्या रह गया है जो अबीर सिंह राठौर उसे और सिखाना चाहते हैं। तब ज़ोया ने अबीर से पूछा, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तब अबीर ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कल सुबह आपको पता चल जाएगा। ऐसा कहकर अबीर सिंह राठौर ने ज़ोया को सुला दिया और खुद कुछ सोचता हुआ मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर राजवीर सिंघानिया ने जो मेहर को तलाक के पेपर भेजे थे, जैसे ही वो मेहर को मिले, मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि राजवीर ऐसा कुछ करेगा। तभी मेहर एक बल के लिए मुस्कुराई और अरमान ठाकुर की ओर देखने लगी। अरमान ने कहा, भेज दिया उसने तलाक के पेपर। तब मेहर ने सिर हिलाया और बोली, आप ठीक कह रहे थे भाई, अब राजवीर सिंघानिया का अगला कदम जरूर मुझे तलाक भेजना होगा, और देखो उसने ऐसा ही किया है। वाह भाई, आपको कैसे पता चला कि राजवीर सिंघानिया ऐसा कुछ करने वाला था? तब अरमान अपनी बहन की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अरमान ठाकुर है और मैं यहाँ इस पोजीशन पर कोई मेहनत और ईमानदारी से नहीं पहुँचा हूँ। इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए मैंने कितनों की बलि चढ़ाई है। और रही बात राजवीर सिंघानिया की, तो अब तुम देखो, उसे बहुत शौक है ना तलाक खेलने का। अब तुम देखो कि मैं उसे इसी तलाक के चक्कर में किस तरह फंसाता हूँ। कुछ सोचकर अरमान हंसा, साथ ही मेहर भी एक जहरीली मुस्कान से हंसती।
अमेरिका में अरहम ठाकुर, जिसे रिया और अक्रम पर नज़र रखने के लिए कहा गया था, वो बखूबी अपना काम कर रहा था। अरहम ठाकुर जानता था कि जैसे ही 6 महीने बाद अबीर राठौड़ ज़ोया को छोड़ेगा, वो सबसे पहले अक्रम और रिया से मिलेगी। अरहम ठाकुर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका था। वो अबीर सिंह राठौर की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी के बारे में पता चला था, वहाँ जाकर देख आया था, लेकिन उसे अभी तक ज़ोया का कोई सुराग नहीं मिला था। इसीलिए उसने सीधा अपनी माँ को निशाना बनाया और अबीर राठौर के घर पहुँच गया था। अब गज़ाला जी भी अरहम ठाकुर के साथ अबीर राठौर के घर पर ही रहती थीं, क्योंकि गज़ाला जी अबीर सिंह राठौर की सौतेली माँ थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो गज़ाला जी को वहाँ रहने से रोक सके। अक्रम अच्छी तरह से जानता था कि अरहम ठाकुर अपनी माँ के साथ यहाँ क्यों आया है, लेकिन उसने रिया को सारी बात समझा दी थी। अकरम जानता था कि अबीर सिंह राठौर के रहते अरहम ठाकुर अकरम और रिया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अरहम ठाकुर अबीर सिंह राठौर के घर पर रहकर अकरम और रिया पर पूरी नज़र रख रहा था। बस उसे एक क्लू की तलाश थी जिससे वो ज़ोया तक पहुंच पाए। लेकिन ना तो अकरम ने इन दिनों अबीर या ज़ोया से कोई बात की थी और ना ही रिया ने। असल में अकरम अपना पूरा समय अपनी पत्नी रिया को दे रहा था, क्योंकि रिया माँ बनने वाली थीं।